الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد في جملة آخر درسنا غصة وشفقة کسی پر غصہ آنا کتنی سخت ترین چیز ہے، کسی منطق کے ذریعے میں اس کو جوڑ نہیں رہا بلکہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدے کا حکم دیا گیا حق جل مجدہ کی طرف سے براہ راست کہ سب سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے کیا، ابا واستکبر، کیوں نہیں کیا؟ آگے اس کی علت بیان فرمائی قرآن کریم، نہایت مرتب، اس کے جیسی مرتب کتاب کب کوئی لکھ سکتا ہے؟ قل ہو وہ مرجع، مرجع ضمیر تب لائی جاتی ہے جب پہلے سے بات ہو رہی ہو، بات تو کوئی ہے نہیں، تو فرمایا کہہ رہے تم نے اب تک غور ہی نہیں کیا کہ میں کون ہوں اور یہ سب کیا ہے، کس نے بنایا وہ، اور وہ تو ہر وقت دماغ میں بسا ہوا ہونا چاہیے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب راجپوری رضی اللہ مرتدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے مالک کی یاد سے غافل ہونا یہ اکبر الکبائر ہے، اسی لیے تو ہے قل ہو، قل ہو اللہ ہی کو نہیں سمجھ سکے گا وہ کہ جس نے اس کو اکبر الکبائر نہیں سمجھا، اسی لیے ایک بزرگ محدث ہیں بہت بڑے تھے، ہر وقت خلوت میں رہتے تھے، تو وہ مالک سے دعا کرتے تھے، دعا میں فریاد کرتے تھے مالک سے کہ الہی کما انسیتہم ذکرک، کہ یہ مالک کی یاد اور اس کا دل میں ہر وقت بسائے رکھنا یہ بھی اسی کی توفیق سے ہوتا ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو پھر اللہ نے بھی ان کو بلا دیا، تو یاد بھی اسی کی توفیق سے ہے، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کما انسیتہم ذکرک، جیسے تیری یاد سے ان کو تم نے محروم کر رکھا ہے، تو ایسے محروم جو تجھے یاد نہیں رکھتے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی مراقبے میں نہیں رہتے، مراقبے معیت، مراقبے، کتنے سارے مراقبے صوفیاء اکرام نے پچاسوں دروازے کھول دیے، اس دروازے سے جاؤ، اس سے جاؤ، اس سے جاؤ، ہم جاتے ہی نہیں، وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا قرآن کی آیات ہے، اسی کو غور کرنا ہے، اسی اس کے معنی ہی کو کہ اللہ میرے، مجھے کیا فکر ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس کی معیت، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے رگے جان سے بھی ہم تمہارے نزدیک ہیں، तो जो इतना करीब उसी को हमने बुला रखा, वह मा को है न मा कुम, तुम जहां भी हो तो तुम्हारे साथ साथ। तो ये बुजुर्ग दुआ करते हैं कि ये ऐसे महरूम लोगों से मैं मिलना नहीं चाहता, तो इनके दिलों से तू मुझे बुला दे कि मेरे पास ही ना आए। कितनी नफरत कि जो मेरे महबूब को बुलाए बैठे हैं, तो मेरा उनसे क्या ताल्लुक। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, किसी से आपकी दोस्ती है, दोस्त का जो दोस्त होगा उससे आपको मोहब्बत होगी। तो ये भी इलाही, इन्होंने तुझे दोस्त नहीं बनाया तो मेरी याद भी इनके दिलों से दो बुला दे। तो ये जो गुस्से पर मैंने शुरू किया कि कुरान करीम में जो इसने सजदा नहीं किया उसकी वजह बताई गई कि फसजदू इल्ला इबलीस, क्यों नहीं किया कि अबा, ये उसकी दलील बयान की, उसने इनकार किया। और इनकार क्यों किया, वस्तर में कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो उससे अच्छा हूँ, बड़ा बनना चाह। और मैंने इस पर कहा कि कुरान करीम मुरक्कब है, और जैसे यहाँ इसकी इल्लत साथ साथ बयान की जा रही है, तो इसी तरह कुल हू अल्लाह। तो जिसने हू को नहीं पहचाना उसने अपने मालिक को नहीं पहचाना। जो ज़मीरी से हर वक्त इतना बसा हुआ हो दिल में कि बस वो इशारे से कि वो मेरा महबूब, बोलने की भी जरूरत नहीं, नाम की भी जरूरत नहीं, तो कुल हू और फिर आगे कुल हू अल्लाह। तो वो एक ही क्यों कहना चाहिए, इतना ज्यादा दिल में बसा हुआ उसी एक को क्यों रखा जाए, एक सवाल पैदा होता है। कितने सारे वालिदैन को भी खालिक मजाजी बताया गया, तो उनको क्यों नहीं, फुलां को क्यों नहीं, फुलां को क्यों नहीं। तो उन सब की नफी करने के लिए इल्लत बयान की गई आगे, कि वो वही वो हर वक्त दिल में बसाए रखो उसे, क्यों कि उसके जैसा और कोई नहीं, वो यकता है। कुल हुवल्लाह अहद, आगे फिर और तरीके से उसकी वो सब बयान की गई। तो मैं गुस्से पर मैंने इसको शुरू किया कि उसको इबलीस को गुस्सा आया, किस पर आया, मालिक पर। मालिक पर, इसीलिए जो गुस्सा आता है तो उस गुस्से में आप देखेंगे कि जैसे किसी ने भर दिया हो, हवा भर दी हो, बच्चा फूंक मारता है अपने अपने बलून के लिए, तो उसको रोकते हैं भाई फूट जाए हमें। तो इतना इबलीस उसको भरता है, और वो जिस तरह उसने भरा है उसी के मुताबिक वो अमल करता है। कैसे, एक जहाज में एक अरबी बोलने वाले किसी मुल्क की एक फैमिली सफर कर रही थी जहाज में। अब कितनी तमन्नाओं से ये चले होंगे, निकले होंगे, सफर किया होगा, और वो भी हरमैन का, हिजाज पाक का सफर, उम्रे का या हज का। और जो जिनको छोड़कर आए होंगे अपने चहीते लाडले महबूब घर वाले, उनको कितनी उम्मीदें होंगी, कितने फुलहार लेकर के पहुंचे होंगे, कितनी उनके लिए तैयारियां की होंगी। तो जहाज में मामूली किसी वो जहाज में तो क्या हो सकता है कि उधर बैठो इधर बैठो, ये यहाँ क्यों रखा मियाँ बीवी थे। तो जरा सी बात पर उसने कह दिया तलाक तलाक तलाक। इसी तरह एक साउथ अफ्रीकन फैमिली मदीना तैयबा में, वहां से होटल में मुकीम थे मियाँ बीवी, कितनी पाक जगह मदीने पाक, वहां हम इस पर पैर नहीं रख सकते, नफ्स पर तौर कहां रखेंगे। हमने अभी वहां दारुल में बयान में कह रहा था कि ये जितनी शरारतें हम करते हैं, छोटे हों बड़े हों बूढ़े हों बच्चे हों, सब इबलीस की शरारत से अल्लाह ने उसको मोहलत दी है, तो उसका बदला लेने के लिए कि उसे आदम की वजह से निकलना पड़ा, तो उनकी ज़ुर्रियत को भी अपने साथ जहन्नम में ले जाना चाहता है, तो इसलिए वो जोर लगाता है। तो मैं वहाँ हज़रत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा सुनाया कि हज़रत जुमे के लिए तशरीफ लाए मिंबर पर, फरमाया कि जब मैं चला था तो मैं सोच रहा था कि आज काहे पर बयान करूँ, किस पर मैं बयान करूँ, क्योंकि कोई मजमून जहन में नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने मस्जिद में कदम रखा कि जहन में हकीम साहब मिले और हकीम साहब ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा हज़रत दुआ फरमाइए, हवा ने बहुत परेशान कर रखा है। कभी मुझे मौजू मिल गया, ओहो ये सारी खराबी हवा ही की वजह से है, नफ्स और हवा। तो ये सूफिया कराम जो नफ्स कुशी सिखाते हैं करवाते हैं, मुजाहदात और रियाजत करवाते हैं, वो इसी नफ्स कुशी के लिए, उसके ऊपर पैर रख दो। लेकिन हम ये सीखते नहीं कि कैसे प्यार रखें। जिस तरह वो कहता है हजरत फरमाते हैं, हजरत के जुमले भी बड़े प्यारे, फरमाया कि हमारा क्या, हम तो हर वक्त शैतान की खुशामद में रहते हैं अल्लाह, पर जिस तरह एक बच्चा दूसरे कहता है चल नहीं चल खेलने के लिए चलो चलो चलो, इसको कहते खुशामद, किसी काम के लिए बार बार इशरार करना प्यार से समझाना इसको प्यार से, तो वो प्यार ही दिखाता है इब्लीस भी। तो हजरत ने फरमाया कि उसको जोर लगाने की हमारे लिए जरूरत ही नहीं, हम हर वक्त उसी के खुशामद में रहते कि तू चल। जब इस दर्जे हजरत ने उसको पहचान लिया था, तभी इंतकाल से दो तीन दिन पहले हजरत चुपचाप है किसी चीज में मसरूफ थे, कोई खत सुन रहे थे, क्या इतने में मारो, इस तरह मुड़ करके हजरत मारो इसको। हम हैरान है कि मदीना तैयबा है, हजरत शेखुद्दीन सिद्धू मदरसा उर्दू में शरिया के अपने कमरे में है और बिल्कुल ठीक ठाक है, तबीयत भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, बड़ी अचानक बीच में क्या मारो इसको। लेकिन वो चूंकि सचमुच था बहुत गजब चेहरा सुर नहायत गुस्से में, फिर थोड़ी देर के बाद हम चुप रहे कुछ नहीं सके, दूसरी दफे उतने ही उससे ज्यादा जोर से, फिर तीसरी मरतबा वो एक ही जुमला उसको नहीं फरमा कर तू जा इबलीस मारो इसको। तीसरी दफे के बाद फिर हजरत मुस्कुरा फरमाना कि इबलीस आया था, तो इंतकाल से पहले अल्लाह हमें बचा ले, ईमान छीनने के लिए आता है। पीरान फीर रहमतुल्लाह के पास पहुंच गया, इतने बड़े बुजुर्ग तो हम क्या होते हैं उसके सामने, जो हर वक्त उसकी खुशामद में हजरत के बकौल रहते हैं। तो ये जो गुस्सा वो जो भरता है उसके भरने की वजह से जिस तरह वो कहता है हम करते रहते हैं। तो हज़रत मौलाना शाह वसीमुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझे तो मौजू मिल गया, हकीम साहब ने मौजू दे दिया कि सब कुछ ये नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करना, बस जो दिल में आए उसके खिलाफ करना सीख लो, बस आसान काम। वो अभी यहाँ से जाने के बाद बहुत थक गए हैं, अभी बहुत कई घंटे बैठकर आए हैं, थक गए सो जाते हैं, तो उसके खिलाफ वजू करके नमाज शुरू कर दो उसके बरक्स। और जिस चीज़ के खाने को जी चाहे तो एक ही मुराकबा कर लो, तसव्वुर कर लो कि अरे मेरे आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये टाइम टू टाइम खाना था कभी, कि वहाँ न गदा था न आशा था। साहबे कराम फरमाते हैं कि ये एक बिदत जारी हुई हमारे यहाँ, सबसे पहले खाने की बिदत ये नाम से, कि ये गदा है दोपहर का खाना है ये शाम का खाना है। आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सारी रात नफलों में गुजरी, और जब सुबह सादिक हुई तो उस वक्त से लेकर सूरज के बुलंद हो जाने तक जिक्र तस्बीह में मशगूल रहे। फिर उसके बाद हजरत सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके जिनको जो काम सुपुर्द करने थे उसमें उससे पारे हुए, और बड़ी चाश के करीब घर में तशरीफ ले जाते। तो ये सवाल हर के हलीम लकुम शही, तुम्हारे पास कुछ कोई चीज़ है? कोई चीज़ हमारे यहाँ अनवा अकसाम साथ सामने हैं, और ये देखो इबलीस ने कितना हमें गैन बना रखा है, ये पसंद नहीं ये पसंद नहीं वो क्यों नहीं, ये मीठा है ये कड़वा है ये खट्टा है ये तीखा है ये फीका है, कितने गुलाम है। तो हजरत का ये जुमला कि हम हर वक्त इबलीस की खुशामद में रहते हैं, कितना सच्चा अनुभव, कितना सही सादिक आता है। तो उस वक्त ये मुराकबा शुरू कर दो, जैसे ही उसने कहा कि चलो किचन में कुछ खा लेते हैं, तो उसे क्योंकि मैंने तो अभी इतने घंटे पहले खाया था, मैं क्यों खाऊं, क्या जरूरत मुझे खाने की, क्या आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी रात तहज्जुद में खड़े हैं पैर वरम कर जाते थे, और उसके बाद फिर बड़ी चाश के करीब आकर जब सवाल किया कि कुछ है घर में, तो अगर वहाँ होती तो कोई खजूर पेश कर देते, अगर नहीं है तो वो अर्ज कर देगी या रसूलल्लाह कोई चीज़ नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या फरमा दें, इन्नी इज़न लसाइम, तब तो मेरा रोज़ा, बस रोज़ा शुरू फरमा दें। यानी तलाश है खाने की, भूख लगी है, तो उसकी तलब और तलाश के ढूंढा जाए, किसी को भेजा जाए कोई लेकर आए, इसके बजाय क्या फरमाया अपना इलाज, इन्नी इज़न लसाइमुन, के तब तो मेरा रोज़ा। कितने आसान रस्ते हैं नफ्स खुशी के और नफ्स का प्यार रखने के, इस हवा का जो हमने अपने नफ्स को आदि बना रखा है उसके लिए। कि हज़रत मौलाना शाह वसीमुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोस्तों हकीम साहब ने बड़ा अच्छा मौजू दे दिया कि ये हवा और नफ्स की ख्वाहिश यही सबसे बड़ी हमारी बीमारी है। जब तक हम उस पर पैर नहीं रखेंगे, हजरत शेख खुद से वो फरमाते हैं कि वहाँ हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ रमज़ान मुबारक में एक जंगली, जिस तरह हमारे यहाँ बेर और इमली ये चीज़ें आम होती हैं, इस तरह गूलर के दरख्त, जंगली दरख्त का फल, हजरत ने इफ्तारी के वक्त पूछा हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि भाई इफ्तारी का वक्त हो गया, तो खादिम ने अर्ज किया कि हजरत इफ्तारी के लिए तो कुछ है नहीं, पर मैं वो कल वाले गूलर पड़े हुए थे, देखो ताक में पड़े होंगे, ले आओ, ये थी इफ्तारी। हर चीज में हम तो खाने में, पीने में, लिबास में, बिस्तर में, मकान में, कितने दूर पहुंच गया। और इन हजरात साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन के नजदीक तो ये चीजें लाश हैं, इनको सोचना, इनकी तलब और तलाश, इसको तो अपने ऊपर हराम कर रखा था हम लोगों ने। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख कर हम पढ़ते ही नहीं, जिंदगी हमें फुर्सत ही नहीं, अपने जगहों से नफ्स की गुलामी में हमने सब कुछ छोड़ रखा है। जिस तरह वो पकड़ कर जहां ले जाता है उसके मुताबिक हम करते रहते हैं, तो दोस्तों हमें अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। और उसके लिए जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये जो कुछ भी कहेगा इबलीस अंदर से, जो आपको ख्वाहिश हो उसके खिलाफ करना सीख जाए, सोने के लिए कहे तो तिलावत में लग जाए, नमाज में लग जाए, वो खाने के लिए कहे तो नफ्स को सजा दीजिए कि मैं हरगिज वो कसमें खा लेते थे। हजरत शेख खुद सिद्धू फरमाते हैं कि एक मरतबा कई टोकरे भरकर फल कहीं से आ गए तो मैंने फुला फुला को भिजवाए, क्यों कि वो कितना इख्फा अपने आप को छुपाते कितना थे अदरक, पर मैं कि इसलिए कि वो मेरा जायद चीज़ों के तर्क का जमाना था, जमाना कितना बरस हा बरस हजरत ने नफ्स खुशी की होगी कि मैंने सब टोकरे भाई फुलां को दे दो, हकीम जी के यहाँ दे दो, नाजिम साहब के यहाँ दे दो, तलबा को दे दो, फुलां को दे दो, सब खर्च कर दिया, क्यों कि वो मेरा जाहिर चीज़ों के तर्क का ज़माना था। और जाहिर चीज़ें जैसे उम्महातुल मोमिनीन, नौ घर सारे के सारे खाली के, जिसमें आका के लिए एक खजूर नहीं होती थी कि जैसे आप नोश कर माने, और हमारे घर का कोई कोना बाकी नहीं होगा कि जिसमें चीजें भरी हुई ना हो। तो दोस्तों अपनी जिंदगी का रुख बदलने की जरूरत है, खास तौर पर जो हजरत मौलाना इलियास साहब नवरल्लाहु मरकज़हु के मिशन और काम को लेकर चले हुए हैं। मैंने वहाँ दारू में भी कहा कि जब ही तो वहाँ बानी तबलीग मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम जनाजा जा रहा है, इतनी मखलूक है कि जनाजे के साथ बांस एक एक चारों तरफ बांध दिए गए। देखा कि ओहो ये तो काफ़ी नहीं है, बहुत मजमा है, तो कहते हैं दूसरा बांधा गया, तीसरा बांधा गया, और एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे, कई घंटे जब गुजर गए तो एक साहिब कश बुजुर्ग अपने बेदारी की हालत में, मुकाशफे की हालत में वो देखते हैं कि हजरत मौलाना इस्माइल साहब फरमा रहे हैं कि अरे मुझे जल्दी दफन कर दो, आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की जमात के साथ खड़े हुए हैं सामने। तो हजरत सहाबा की जिंदगियां, आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी, उन पर चलने की कितनी कोशिश की होगी कि आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए कि ये मेरा इस्माइल कांगल में आ रहा है इस्तकबाल के लिए। और हमें तो हजरत शेख उदीसलू ने जो पुराने साथी हैं उनको याद भी होगा कि मगरिब के बाद जो हजरत कुछ कलिमात फरमाते थे तो उसमें हजरत ने एक मरतबा फरमाया दाढ़ी के मुताल्लिक, फरमाया कि दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ किसरा के भेजे हुए दो ईरानी पहुंचे जिनकी मूछें बड़ी बड़ी लंबी और दाढ़ियां मुंडी हुई, और भेजा क्यों था? किसरा ने खत फाड़ कर फेंक दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और यमन के गवर्नर को लिखा कि ये कौन है जिन्होंने हमें खत लिखा है, उनको पकड़ कर लो। तो ऐसी अजीम सल्तनत थी किसरा की कि जिसके पास आदमी ऐसे थे कि अब उन्होंने पूछा कि भाई वो जिसका नाम यथरिब है, मदीना मुनव्वरा है, तो वहाँ जिन्होंने दावा किया है उसके उस जगह की और आसपास की आबादी कितनी है, तो बताई गई इतनी। तो दो आदमी भेजे गए कि अतराफ के सारे हिजाज को मिला करके जो मदीना मुनव्वरा के आसपास का इलाका है कुल आबादी जितनी थी उसके हिसाब से उसने दो आदमी भेजे कि ये एक आदमी 1,000 आदमियों के मुकाबले के लिए काफी है, 1,000 की फौज को ये तन्हा शिकस्त दे सकता है। तो वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, एक निगाह मोहम्मदी की ताब नहीं ला सके, वो कांप रहे हैं। मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होते ही, सामना होते ही सिर्फ एक जुमला फरमाया कि ये शक्ल बनाने का तुम्हें किसने हुक्म दिया? तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे रब ने किसरा को रब मानते थे, सजदा करते थे, उसे सब कुछ समझते थे, अपने खालिक और मालिक की जगह रब करार दे रखा था, तो हमें हमारे रब ने इसका हुक्म दिया दाढ़ी मुंडाओ मुझे बढ़ाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तो मेरे रब ने ये हुक्म दिया है कि मैं मूछ कटाऊं और दाढ़ी बढ़ाऊं। फिर जो जुमला में सुनाना चाहता था वो एक हजरत ने फरमाया कि मेरे प्यारो इस हुलिये के साथ कब्र में पहुंचे तो आका का सामना होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों की ये शक्लें देखकर रुख अनवर दूसरी तरफ फेर लिया और उनसे फरमाया कि तुम्हें ये शक्ल बनाने का किसने हुक्म दिया? तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में हमारी तरफ से रुख फेर लिया तो हम किधर जाएं, वहां कौन होगा हमारे लिए? तो ये हमारी तो ये दाढ़ी मूछ के साथ भी सारी जिंदगी का रुख दूसरा ही है। न हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह खाना पीना सीखा, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह भूखा रहना सीखा, न अपनी इस बीमारी को बीमारी समझा, अब मैं एक मिसाल देता हूं कि बीमारी को बीमारी कैसे नहीं समझा, कि अभी आप वुजू करेंगे, वुजू खाने में जाकर देखेंगे कि नल खोला और ये दोनों, और ये तो कौन है कि जो जिन्होंने तालीम इस्लाम पढ़ी, बेशती समर पढ़ी, कि वुजू, तो वुजू में, वुजू के लिए वहां तालीम इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि दुआ की तरह हाथ फैला दो, वहां क्या लिखा है, चुल्लू, एक चुल्लू भरो, एक चुल्लू से हाथ धो, एक चुल्लू, एक चुल्लू, तो ये चुल्लू हुआ है, ये तो कोई 10 चुल्लू के बराबर हो गया। एक चुल्लू तो इतना होता है कि जो मुंह में आप उल्ली के लिए पानी लेते हैं वो पानी, और जो इसके खिलाफ वुजू करके पानी हम जाया करते हैं उसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस तरह वुजू नहीं करेगा मेरे तरीके के मुताबिक, जितने चुल्लू आप गिन लें, कि 3 चुल्लू हाथ धोने के लिए, 3 चुल्लू मुंह में डालने के लिए, नाक में डालने के लिए 3, और मुंह धोने के लिए भी 3 चुल्लू, एक दफे लो और दूसरा हाथ मिला दो मदद के लिए और उससे मुंह धो। इसी इतना है 3 चुल्लू से एक हाथ, जब आप इसको सीख जाएंगे चुल्लू से वजू करना, तो आपको जब तक सीखेंगे नहीं वहां तक तो हमें एहसास भी नहीं होगा कि मैं कितना बड़ा जुर्म कर रहा हूं, कि जिस जुर्म के मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसके खिलाफ वजू करेगा फकत तअद्दा व ज़लम, कि वो मुतअद्दी है, ज्यादती करने वाला है, जालिम है। तो ऐसे जालिम बनकर हम मस्जिद में आकर वजू करें, चाहे घर पर वजू करें, और वो नमाज हमारी कैसी होगी? तो हमने वजू भी नहीं सीखा। जब हमने ये मुद बनाने शुरू किए तो एक लखाड़ किस्म के आलिम जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत जोर जोर से उनकी तकारीर भी, और तो जब मैंने उनके सामने कहा कि भाई ये जो मुद है इससे वजू मसनून है, और जो इससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करेगा उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दी और जालिम बताया, तो ये तो खामोशी से वो सुनते रहे। लेकिन फिर जब मैं गुस्ल पर आया, मैंने कहा कि यही मुद, एक मुद से वजू और ऐसे 4 मुद से गुस्ल, कितने मुद, 4 मुद, इतना पानी। तो अब वो उनकी वो जो मैंने कहा ना कि हवा जो भरता है इब्लीस, वो भड़क उठती, हा 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 करके एक जोर से कहा लगाया कि अच्छा इससे जो वजू करके निकलेगा तो वो तो गुस्ल क्या होगा, कोई बाहर कहेगा कि शायद ये पसीना है इसके जिस्म पर। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा ईमान किधर जा रहा है, और ये तो कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि जिसे कोई कह सके कि ये गरीब है और ये ज़ईफ है और ये फलां है। तो ये सब हमारा रुख उल्टा है। इसलिए तलबा से मैं हमेशा कहा करता था, इस साल दौरे में खासतौर पर मैंने कहा कि मामूल बनाओ, कि ये जमाना ऐसा है कि एक एक चीज में ईमान छिन जाएगा। ये आपके मोबाइल ही छीन लेते हैं, किसी इंग्लिश किसी इंसान को की शक्ल में इंग्लिश को अपना नुमाइंदा भेजने की भी जरूरत नहीं है, खोला और पढ़ा और ईमान गया। जैसे मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की और उन्होंने अपनी अकल से इसको नापना शुरू किया कि ये कब हो सकता है कि इतने पानी से कोई गुस्ल कर ले। एक पक्का जोर से लगाया। तो दोस्तों हमें अपना ये जब साफ बनकर आया हमारा, तो मैंने घर में घर वालों से कहा कि देखो तो कासिम की उम्र उस वक्त मेरे ख्याल में 6 साल की थी, तो मैंने कहा कासिम से लेकर बड़े छोटे सब आज ये 1-2 घंटे में गुस्ल इसी से कर लें। फिर मैंने उनको बिठाकर समझाया, मैंने कहा कि देखो ये गुस्ल वजू में हम मुद से वजू करते हैं, आसानी से वजू हो जाता है और मुद में 1/3 पानी बच भी जाता है, इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे उसे जो बच जाता था। तो मैंने कहा कि ये यहाँ से लेकर ये दोनों धुल गए, पैर नीचे से धुल गए और ये चेहरा सारा दाढ़ी समेत ये धुल गया। अब आधे के करीब तो या 1/3 तो लाजिमन आप एक मुद से धो सकते हैं। अब रह गया बाकी 2/3 हिस्सा, 2/3, तो अब उसके लिए क्या 3 मुद काफी नहीं होंगे? यकीनन होंगे, जब 2 में 1 मुद में इतना जिस्म का 1/3 हिस्सा आप धो चुके, तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा गुस्ल फरमाती थी तो वहाँ भी हाथ से पानी लेकर डाल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मुल मोमिनीन हाथ डालने जा रही है, फरमाते डाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बढ़ा रहे हैं पानी लेने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन अर्ज करती है डाली मुझे लेने दो। कितनी प्यारी जिंदगी। तो ये डाली कोई बेअदबी और बदतमीजी नहीं है, ये तो ऐन लुत्फ और मजे की जिंदगी है। कितनी मजेदार आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त भरी जिंदगी उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ। इसीलिए हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ उम्मे अयमन से बड़ी मोहब्बत थी। फरमाती हैं कि एक दफे मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके घर पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे और आपने जिस बर्तन में पानी था उसमें, वहाँ मदीना तैयबा में हज़रत शेख उद्दीन के साथ हम हुआ करते थे, तो वहाँ एक उसको ज़ील कहा जाता है जिसमें पानी मिट्टी का बर्तन ऊपर से थोड़ा सा खुला हुआ, बीच में गला उसका बहुत तंग और उसका पेट बहुत बड़ा, तो उसको एक राउंड वाले लोहे के कड़े में रखा जाता था ताकि गिर न जाए, तो उसमें पानी बहुत ठंडा रहता था, हवा लगती रहती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठकर शरीफ ले गए। हजरत मिर्ज़ा मज़हर जान जाना रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में दिल्ली के बादशाह उनकी ज़ियारत को पहुँचे, प्यास लगी हज़रत के पास पहुँच कर, तो अपने किसी खादिम को इशारा किया पानी, तो हज़रत मिर्ज़ा साहब ने डांटा, यहाँ किसी से खिदमत नहीं ली जा सकती, प्यास लगी है तो खुद उठकर जाओ और पानी पियो। अब वो बादशाह सलामत पहुंचे, पानी पिया और वापस आकर बैठे तो मिर्जा साहब ने सर पकड़ लिया।
अरे
जिसको कटोरा ठीक से रखना नहीं आया, उसको गलत रखा तुमने, तुम सदनक क्या इंतजाम से चलाते होंगे, एक कटोरा ठीक से नहीं रख सकते, दोबारा उठना पड़ा कि जिस तरह पहले रखा हुआ था इस तरह उसको रखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी पीने से फारिग हुए तो उम्मे आयमन अपनी जगह पर बैठी हुई, इसके नहीं या मोहम्मद, इसके नहीं या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के पैगंबर मुझे भी पिला दो। तो उम्मुल मोमिनीन अर्ज कर दिए कि मैंने उम्मे आयमन से कहा कि अरे तू मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिदमत ले रही है, कितना मुश्किल सवाल था उम्मुल मोमिनीन का कि आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पानी पिलाने का मुतालबा, खिदमत का मुतालबा। तो इसका जवाब कितना प्यारा दिया उम्मे आयमन ने, वो कहती है खदम तू हो अख्तर मिन दालिक, कि मैंने इनकी इससे भी ज्यादा खिदमत की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि ये उम्मे आयमन ने सही कहा, बहुत प्यार था, क्योंकि माँ का जनाजा सामने है और माँ अशार पढ़ती हुई इस जहां से रुख्सत हुई उम्मे आयमन के एक बांदी के हवाले करके जौफा के करीब जंगल बयाबान में, रात का वक्त है, न कोई मदद करने वाला, न कोई आहो का फरियाद सुनने वाला, तो वहां कैसे हजरत आमीना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने लाडले को, महबूब को जंगल बयाबान में सकरात के वक्त छोड़ा होगा, तो और कैसे उम्मे आयमन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार दिया होगा, अपनी जान कैसे कुर्बान की होगी। इसीलिए उम्मे आयमन ने देखा कि भाई सब हिजरत करके जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, मुझे तो कोई ले ही नहीं जाता, तो चल पड़ी। तसव्वुर कीजिए, अभी चंद साल पहले कोई काफिला गया था, कहते हैं भाई वो जो होटल उनका बुक था तो वो होटल, उस होटल में उनके लिए जगह नहीं रही, बुकिंग को गलत हो गई या क्या हो गया, कहते हैं सारा काफिला बाहर पड़ा हुआ है, कि असर के वक्त पहुंचे, इफ्तारी सड़क पर उन्होंने की, मगरिब उसके बाद खाना, फिर उसके बाद ईशा, उसके बाद फिर तरावी, फिर तो सबको बड़ा तरस और रहम आया कि वाकई ये कैसा इंतजाम है कि अपने मुसाफिरों को वो एक जगह होटल नहीं थे, दूसरी जगह कहीं ना कहीं इंतज़ाम करके फौरी तौर पर कोई इंतज़ाम कर दे, सब परेशान हो गए सुनकर। तो एक दिन मदीना तैयबा में सड़क पर गुजारना एक कयामत मालूम होता है, हम कितने दूर, और मुमिनी उम्मे आयमन रजी अल्लाह तआला ने मक्का मुकर्रमा से चल पड़ी अपने लाडले और प्यारे और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए, हिजरत के लिए। और क्या उनकी जिंदगी थी हजरत साहबा रजी अल्लाह अन्हा, नफ्स खुशी उन्होंने किस दर्जे की होगी कि उनके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं थी, जान देना तो एक आखिरी मरहला है, उनका इतने पुख्ता ईमान होता था कि वो नलका मुहम्मदन व हिजबा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब मुलाकात होगी और आपकी, आपके असहाबे किराम से हमारी मुलाकात होगी, आपकी जमात से मुलाकात होगी। तब इस सफर में भी लिखा है कि उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसलसल रोजे से और इतना लंबा सफर तरह तरह, तो खुद बयान फरमाती हैं उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा कि एक जगह पहुंचकर मैं रोजे से थी और प्यास की शिद्दत इस कदर बढ़ी कि अब इफ्तारी के लिए पानी नहीं है, कहाँ भागें पथरीली ज़मीन में, पथरीले पहाड़ों में, किसको आवाज़ दें, किसको पुकारें। तो फरमाती हैं कि इतने में मैंने कोई आहट महसूस की, वो आसमान से डोल जिस तरह कुएं में लटकाया जाता है, डोल लटक कर आ गया। कहते हैं मैंने पी लिया। कहते हैं सारी उम्र की उम्मे ऐमन फरमाती है कि उस दिन से जो आसमान वाले डोल से मैंने पानी से इफ्तार किया है, उस वक्त से मेरी हमेशा के लिए प्यास ख़त्म हो गई। ये मदीना तय वो जन्नत का डोल जो उतरा था, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें करना है। आपकी नमाज का वक्त हो गया,
जी 10 बजे।
अच्छा, तो ये हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी, हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो एक एक नमूना हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, को अहले मक्का ने इतना परेशान किया उन्हें और उनके शौहर को कि वो मजबूर हो गई कि देखा गया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सब हिजरत करके हबशा जा रहे हैं। तो इब्न जहश के साथ वो भी चली गई कि दोनों मियाँ बीवी इस्लाम ला चुके थे। अब इस जोड़े ने सफ़र किया और हबशा पहुंच गए, तो जो अशद्दु बलान अम्बिया के हजरात अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से सबसे ज़्यादा उन्हें आजमाया जाता है, सबसे ज़्यादा मशक्क़त, तकालीफ, मसाइब, मुश्किलात उनको दरपेश होती है। तुम अमसर कलम था, फिर जो उनके दर्जे के अतबार से जो उनके करीब होंगे तो उनको फिर उनके नीचे तो दर्जा बदर्जा जो जितने करीब होंगे उनको उतना ही हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम की तरह से आजमाया जाता है। तो अब ये पहुँच गए हबशा, उन्हें हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ शौहर इब्न जहश वहाँ मुकीम है, आराम से है मलिक हबशा के पास। एक दिन ख्वाब देखती है हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो उन्होंने पूरा ख्वाब नहीं बयान फरमाया, सिर्फ ये फरमाया कि रअईतु अस्वा हालन, कि मैंने मेरे शौहर इब्न जहश को बहुत बुरे हाल में देखा, बहुत बुरी शक्ल में देखा। कहते मैं परेशान हो गई कि इलाही ये क्या होगा। कहते सुबह हुई और सुबह जैसे ही वो मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे कि मैं पहले बुत परस्त था और बुत परस्ती से तौबा करके मैं नसरानी बन गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर मैं मक्के में इस्लाम ले आया, मुसलमान हुआ। लेकिन यहाँ इस नसरानी मुल्क में पहुंचकर हबशे में मुझे वही मज़हब अच्छा लगता है और मैं कहता हूं कि साफ साफ तुम्हें कि मैं नसरानी बन गया। ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے کتنا پیارا انتظام ہوا کہ پہلے دکھا دیا گیا کہ ذرا سنبھل جانا, آج بہت بڑا حادثہ تمہیں پیش آئے گا. تو پہلے دکھا دیا بیسوئے حال, اور فرماتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اپنا وطن چھوڑا دین کے خاطر, اسلام کے خاطر, اللہ کے خاطر, اور یہاں پہنچ کر اتنا بڑا امتحان کہ شوہر مرتد ہو گیا. تو اللہ عز و جل کی طرف سے پھر تسلی. خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ کوئی ام حبیبہ کہہ کر ان کو نہیں بلا رہا, بلکہ کوئی کہہ رہا ہے یا ام المؤمنین. ظاہر ہے کہ خواب میں دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا, ام المؤمنین مجھے بنا دیا. ہاں کھلی تو دیکھا کہاں, لیکن وہ اللہ عز و جل کی طرف سے وہ بشارت تھی کہ اب تم فکر نہ کرو, یہ مرتد ہو گیا, جہنم رسید ہوگا, لیکن تمہارے لیے اللہ عز و جل نے زبردست ایک نعم البدل تجویز فرمایا ہے. وہ یہ کہ تم ام المؤمنین بنو گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حریم میں آپ کو قبول فرمائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک حبشہ کو پیغام بھیجا کہ ام حبیبہ سے ہمارا نکاح کرا دے. تو باقاعدہ ملک حبشہ نے پھر مجلس منعقد کی, اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل ام حبیبہ سے پوچھا گیا, تو دو نام